नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत अहम पुस्तक महिला जागृति अभियान पर एक गहरी चर्चा करेंगे।
जी, ये पुस्तक जैसा आपने कहा 1988 से 90 के बीच लिखी गई उनकी जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला है उसी का एक हिस्सा है।
हाँ, और इस पुस्तक माला का महत्व तो पूज्य गुरुदेव ने स्वयं बताया था। उन्होंने वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माता जी से कहा था, है ना?
बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जीवित रहेगा और वो इसी क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में रहेगा और इसे जन जन तक पहुंचाना है।
तो बस आज हमारा प्रयास यही है कि पूज्य गुरुदेव के इन विचारों को समझें, खास तौर पर नारी के दिव्य स्वरूप के बारे में, उसके ऐतिहासिक पतन पर और आज के युग में उसके जागरण की जरूरत क्यों है।
जी, और देखना है कि ये विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। शुरुआत करें अगर उनके मूल विचार से, तो पूज्य गुरुदेव मानते थे कि सृष्टि की रचना ही मातृशक्ति से हुई है।
इसीलिए नारी को सिर्फ स्त्री नहीं कहा उन्होंने, वेद माता, देव माता, विश्व माता, ये सब कहा।
हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है उनके अनुसार। आप देखिए ना, हमारे देवत्व प्रतीकों में भी नारी का स्थान पहला है।
हाँ, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधेश्याम, हमेशा नारी पहले। गुरुदेव कहते थे कि नारी दिखती भले मानुषी हो, पर है वो देवी।
बिल्कुल, उसकी भाव संवेदना, धर्म धारणा, सेवा साधना, इन सब में ये बात दिखती है। लेकिन फिर एक दौर आया, मध्यकाल का अंधकार युग जिसे कहते हैं।
हाँ, उस समय स्थिति बिल्कुल पलट गई, नारी का स्थान बहुत नीचे गिरा दिया गया।
जी, जो देवी थी उसे अब अबला, कामिनी, भोग्या, दासी, क्या कुछ नहीं समझा गया। वो जो पूज्य भाव था वो खत्म हो गया।
और इसके नतीजे भयानक हुए होंगे, मानवोचित अधिकार भी नहीं दिए गए।
वही तो, अधिकारों से वंचित कर दिया, घर में कैद कर दिया, कन्या जन्म को ही दुर्भाग्य मान लिया गया, शिक्षा में, दुलार में, सब में भेदभाव।
और ये दोहरी आचार संहिताएं, दहेज का उत्पीड़न, आर्थिक पराधीनता, इन सब ने तो जैसे नारी की आत्मा को ही कुचल दिया।
सही कहा, और इसी वजह से वो अपनी जो स्वाभाविक विशेषताएं थी, जो क्षमताएं थी, वो खोती चली गई। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि ये सिर्फ नारी का नुकसान नहीं है।
नहीं, ये तो पूरे समाज का घाटा है। आधी जनशक्ति अगर अपंग हो जाए
तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। वो कहते थे एक और एक 11 होने के बजाय शून्य की तरफ जा रहे हैं हम।
लेकिन पूज्य गुरुदेव निराशावादी नहीं थे, वो हमेशा परिवर्तन की बात करते थे।
हाँ, उनका मानना था कि सृष्टा जो है वो असंतुलन को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता, परिवर्तन तो होना ही है, एक तूफानी प्रवाह आएगा।
और उन्होंने 21वीं सदी को तो सीधे सीधे नारी सदी ही कहा था, है ना?
जी बिल्कुल, ये एक तरह की भविष्यवाणी थी कि नारी अपना खोया हुआ वर्चस्व फिर से पाएगी, और इसके उदाहरण भी हैं इतिहास में।
हाँ, कुंती, मदालसा, सीता, लक्ष्मीबाई, कितनी ही प्रेरणादायक नारियां हुई हैं।
और आधुनिक युग में भी देखिए, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, केरल जैसे राज्य में स्त्री शिक्षा की प्रगति, ये सब नारी की क्षमता दिखाते हैं।
पर इस जागरण के रास्ते में रुकावटें भी तो हैं। गुरुदेव ने सबसे बड़ी बाधा किसे माना?
मानसिकता को। लोगों के मन में जो गलत धारणाएं बैठ गई हैं ना, कि नारी पराए घर का कूड़ा है या सिर्फ भोग की वस्तु है, ये सबसे बड़ी बाधा है।
और दूसरी बाधा?
दूसरी अहम बाधा जिस पर गुरुदेव ने बहुत जोर दिया, वह है समाज में फैली अनियंत्रित कामुकता। वो इसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते थे,
क्योंकि ये नारी के प्रति जो पूज्य भाव है उसे नष्ट कर देती है।
बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने संयम और ब्रह्मचर्य पर बहुत बल दिया। और तीसरी बाधा है पराधीनता,
जो अक्सर शिक्षा और अनुभव की कमी से आती है। कई बार शादी के बाद प्रगति रुक जाती है, तो समाधान क्या सुझाए गुरुदेव ने?
कई ठोस कदम बताए। पहला और सबसे जरूरी, शिक्षा, हर उम्र की नारी के लिए, सिर्फ साक्षरता नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास वाली शिक्षा।
दूसरा स्वावलंबन है ना, आर्थिक आत्मनिर्भरता,
जी,
ताकि वो किसी पर निर्भर ना रहे।
हाँ,
कुटीर उद्योग जैसे साधन अपनाएं। तीसरा समानता, लड़के लड़की में कोई भेद ना हो, पति पत्नी का रिश्ता स्वामी दास का ना हो,
सहयोग का हो, साझेदारी का हो,
और बच्चों के पालन पोषण में भी साझा जिम्मेदारी।
हाँ, पिता की भी बराबर की भागीदारी हो, जैसे स्वीडन वगैरह का उदाहरण देते थे वो। और एक और बहुत अहम बात,
क्या?
प्रजनन पर नियंत्रण।
पूज्य गुरुदेव जनसंख्या वृद्धि और एक बड़ा संकट मानते थे, खासकर इस युग संधि के समय में। उनका कहना था कि नारी और समाज दोनों की प्रगति के लिए इस पर रोक लगानी होगी।
तो मतलब पूज्य गुरुदेव का आह्वान था कि ये युग नारी पुनरुत्थान के लिए समर्पित होने का युग है।
बिल्कुल, दहेज रहित सादगीपूर्ण विवाहों पर जोर, और शांति कुंज में तो नारी जागरण के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आज भी चलते हैं।
तो संक्षेप में कहें तो महिला जागृति अभियान नारी को उसका वो खोया हुआ दिव्य स्थान वापस दिलाने की पुकार है। हाँ, उसे शिक्षा और स्वावलंबन से सशक्त बनाने की, और सिर्फ उसे ही नहीं समाज की सोच को बदलने की भी। गुरुदेव के लिए ये सिर्फ नारी का उत्थान नहीं था,
ये तो पूरी मानवता, पूरे विश्व के उत्थान के लिए अनिवार्य था।
जी, और एक बात पर और ध्यान देना चाहिए, गुरुदेव सिर्फ बाहरी समानता या अधिकारों की ही बात नहीं कर रहे थे,
वो तो रिश्ते की जड़ तक जा रहे थे। नर नारी संबंधों की जो बुनियाद है, कामुकता और सहकारिता, उस पर पुनर्विचार करने को कह रहे थे।
बिल्कुल, कामुकता पर नियंत्रण और सहयोग पर आधारित सच्ची साझेदारी, और शायद यही आज के श्रोताओं के लिए सोचने की बात है।
हाँ, कि अगर हम व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर इस दृष्टि को, संयम और सहकारिता वाली दृष्टि को अपनाएं, तो आज क्या बदलाव आ सकते हैं?
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।
ये गहन चर्चा पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक महिला जागृति अभियान के विचारों पर आधारित थी।